हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे शादी करें। बोलो, शादी करोगे मुझसे? आकांक्षा को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। तब झलक मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती कि तुम आकांक्षा जैसी खूब एजुकेटेड लड़की से शादी करके अपने परिवार का नाम ऊंचा करना चाहते हो। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर अपने पास रखना चाहते हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। भले ही आज जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ वो एक कमज़ोर लम्हे में हुआ, लेकिन आगे से मैं पूरी सावधानी रखूंगी कि तुम मेरी परछाई तक को भी न छुओ। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर खुराना, अगर हिम्मत है तो पूरे समाज के सामने मुझे कबूल करो, मुझसे शादी करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से रखना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। झलक ने सीधे तौर पर ये कहकर सिद्धार्थ को चौंका दिया। सिद्धार्थ पूरी तरह खामोश हो गया। मौका देखकर झलक बाथरूम में घुस गई और अपने कपड़े बदलने लगी। वहीं सिद्धार्थ ने तुरंत शर्ट उठाई और सीधा जिम रूम में चला गया। इस वक्त उसका दिमाग में काफी हद तक तूफान सा चल रहा था। वहीं सिद्धार्थ ने तुरंत शर्ट उठाई और सीधा जिम रूम में चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में काफी हद तक तूफान सा चल रहा था। वहीं झलक सीधा बाथरूम में जाकर कपड़े बदल चुकी थी और अपना हैंडबैग उठाकर बिना सिद्धार्थ को बताए अपार्टमेंट से बाहर निकल गई थी। सिद्धार्थ इस वक्त पूरी तरह बेचैन था। झलक की बातें उसके दिमाग में जैसे तूफान मचा रही थी। झलक के शब्दों ने उसे भीतर तक हिला दिया था, क्योंकि उसने साफ साफ कहा था कि वो उससे शादी कर ले, वो इस तरह से उसके साथ नहीं रह सकती। पर सिद्धार्थ के लिए मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, वास्तव में उसकी इज्जत और साथ साथ आकांक्षा के साथ किया हुआ वादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे लगता था कि आकांक्षा ने उसकी जान बचाई है तो वो झलक से शादी कैसे कर सकता था। उसने तो पहले ही समाज के सामने आकांक्षा से सगाई की थी, वो चाहकर भी अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता था। फिर भी झलक का साथ उसे एक अलग तरह का सुकून देता था। पहली बार झलक ऐसी लड़की थी जिसके साथ वो फिजिकल हुआ था। ये नहीं था कि सिद्धार्थ खुराना की जिंदगी में लड़कियां नहीं आईं, पर झलक कुछ अलग थी। सिद्धार्थ को झलक पसंद आई थी जब वो बदसूरत थी, लेकिन अब तो वो उस शक्लो सूरत में बेहद खास दिखती थी। काफी देर तक अपनी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर उतारने के बाद सिद्धार्थ कमरे में गया और एक नज़र में उसे एहसास हो गया कि झलक यहाँ मौजूद नहीं है। अचानक उसने अपनी मुट्ठियाँ कसकर बांध लीं। फिर से झलक की बातें कानों में गूंजने लगीं कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को लगने लगा कि झलक किसी तरह उसे छोड़कर चली गई होगी। फटाफट उसने अपने असिस्टेंट रोनित को कॉल किया और पता करने को कहा कि झलक कहाँ है। वहीं दूसरी ओर झलक की हालत काफी खराब थी। अपार्टमेंट से निकलते ही वो सीधे आर्यन की कंपनी की ओर निकली थी, लेकिन रस्ते में उसने सोचा अब उसे देर नहीं करनी चाहिए। जो भी पैसे उसे अंगूठी बेचकर मिलेंगे वो लेकर अपने गांव चली जाएगी और माता पिता के साथ नई जिंदगी शुरू कर लेगी। शहर में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। दुकान पर पहुंचकर उसने अपने होठों पर एक मुस्कान सजाई और सुनार की ओर देखते हुए बोली, हेलो सर, मैं अपनी अंगूठी बेचने आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसे कितने में खरीदेंगे? सुनार हैरानी से अंगूठी को देखने लगा और फिर झलक की तरफ देखने लगा। झलक के कपड़े, उसका सिंपल लहजा, जीन्स टॉप, ये सब बतलाते थे कि वो मिडिल क्लास लड़की है। उसके चेहरे पर कोई महंगा मेकअप भी नहीं था। सुनार ने अंगूठी देखकर समझ लिया कि वो असली डायमंड है और काफी महंगी भी। उसने एक बार में ही अंगूठी की कीमत का अंदाज़ा लगा लिया, पर पहली नज़र में उसे झलक पर शक हो गया और उसने कहा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? क्या तुमने ये कहीं से चुराई तो नहीं? झलक पूरी तरह चौंक गई। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी कुछ मजबूरी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनार ने कहा, अगर अंगूठी तुम्हारी है तो इसकी रसीद सामने रखो। रसीद दिखाए बिना मैं इसे नहीं खरीदूंगा। वैसे भी मैं चोरी की अंगूठी लेकर कोई रिस्क नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर झलक और भी हैरान हुई। उसका इरादा तो सादगी से अंगूठी बेचकर गांव चली जाना था, पर अब सुनार की बातें सुनकर वो कुछ असमंजस में पड़ गई। झलक पूरी तरह चौंक गई और फिर खुद को थोड़ा शांत करके बोली थी, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ मजबूरी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर उसने अंगूठी ली और बाहर आ गई। अब उसका दिमाग जोरों से चलने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसे एक बार आर्यन से बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए उसने फटाफट से आर्यन को फोन लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ झलक का कॉल आते ही आर्यन ने तुरंत फोन उठा लिया और फिक्र भरे लहजे में बोला था, झलक तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने आओगी, मैं तुम्हारी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये सब सुनकर आर्यन पूरी तरह झलक के फिक्र में डूब गया था। एक पल को आर्यन का इस तरह से फिक्र करते देख झलक को काफी अच्छा भी लगा, लेकिन फिलहाल उसने जवाब दिया, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, तुम कहाँ हो अभी। ये सुनते ही आर्यन जल्दी से बोला, मैं तो ऑफिस आ गया हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तब झलक बोली थी, नहीं तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए झलक आर्यन के ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी थी। वहीं रोनित, जो कि झलक के फोन को ट्रेस कर रहा था, क्योंकि जो नया फोन सिद्धार्थ ने रोनित के जरिए झलक को दिया था उसमें पहले से ही ट्रांसमीटर आर्ट था। उस ट्रांसमीटर से झलक की पूरी लोकेशन, वो कब और कहाँ जाती है, ये सब सिद्धार्थ को पता चलता रहता था। इस लोकेशन को फॉलो करते हुए रोनित को जल्दी ही पता चल गया कि झलक कहीं और नहीं बल्कि रायचंद एम्पायर में गई है। उसने तुरंत ये खबर सिद्धार्थ को दे दी थी। अब जैसे ही सिद्धार्थ को ये पता चला कि झलक आर्यन रायचंद के पास गई है, वो पूरी तरह आग बबूला हो उठा। वो झलक और आर्यन को एक साथ देख ही नहीं सकता था। गुस्से से तमतमाते हुए वो बोला, तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। भले ही मेरी शादी आकांक्षा से हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ये बोलते हुए सिद्धार्थ पागल सा लग रहा था। वहीं दूसरी ओर ठीक 3 दिनों बाद दादी का जन्मदिन आने वाला था। दादी की खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज एक स्पेशल मेहमान भी दादी से मिलने के लिए आने वाला था। इसीलिए दादी ने सोचा कि पार्टी में बड़ा अनाउंसमेंट करने से पहले क्यों ना एक बार झलक को अपने पास बुला लिया जाए और जो कुछ वो अनाउंसमेंट करने वाली हैं उसके बारे में उसे बता दिया जाए, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल था। दादी के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। देर न करते हुए उन्होंने झलक को फोन लगाना शुरू कर दिया था। वहीं झलक, जो आर्यन से मिलने के लिए जा रही थी, जैसे ही उसे दादी का कॉल आया उसने तुरंत दादी का कॉल रिसीव कर लिया और बोली, आप कैसी हैं दादी, ठीक है ना? दादी बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, क्या तुम आज खुराना मेंशन आ सकती हो? ये सुनकर झलक ने सोचा कि वो तो वैसे भी दादी से आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए खुराना मेंशन जाने वाली थी, तो क्यों ना आज ही चली जाए। उसने कहा, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। उससे पहले झलक ने आर्यन को मिलने का वादा शाम के लिए किया था। ये सुनकर दादी मुस्कुरा दी और खुशी खुशी किसी को कॉल करने लगी। वहीं दूसरी ओर झलक अब आर्यन से मिलने के लिए जा पहुंची थी।
जैसे ही झलक ने आर्यन के केबिन में कदम रखा, आर्यन ने तुरंत उसे देखकर गले से लगा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, दोस्तों जिस दिन सिद्धार्थ को झलक का उसकी जान बचाने का सच पता चलेगा उसी दिन दोनों की शादी हो जाएगी। दादी की बर्थडे वाले दिन दोनों की शादी हो जाएगी। आने वाले 15-20 चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। होप आप सब अपना साथ बनाए रखेंगे।